राजयोग शिविर सकारात्मक जीवन शैली के अंतर्गत आज ये तीसरा सत्र है, जिसमें परमात्मा का यथार्थ परिचय क्या है। अभी बहुत सुंदर के दिव्य गीत सुना कि प्रेम से बस दो घड़ी परमात्मा को याद करो, परंतु प्रेम से दो घड़ी भी मन परमात्मा में एकाग्र नहीं हो पाता है। अनेक बातों में, अनेक विषयों में हमारा मन चला जाता है और फिर हम अपने मन को दोषी मानते रहते हैं कि मन बड़ा दुष्ट है, मन बड़ा पापी है, मन बड़ा खराब है। परंतु मन खराब नहीं है, मन दुष्ट नहीं है, सिर्फ उसको चलाने की विधि हमें आती नहीं है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा खूब चंचलता मचाता हो, अड़ोस पड़ोस के कई लोग उसको शांत करने का प्रयत्न करते हो, लेकिन जितना ही उसको शांत करने का प्रयत्न करे उतना ही वो ज्यादा से ज्यादा चंचलता करता है। परंतु उसकी मां जब आती है और मां को उसका नेचर मालूम है, उसी अनुसार वो उसको या आंख दिखाती है, ये प्यार करती है, या उसको वही चीज दे देती है जिसके लिए वो इतना तूफान मचाता है, वो बच्चा अपने आप शांत हो जाता है। इसी प्रकार मन अगर चंचलता कर रहा है, मन अगर उधम मचा रहा है, तो उसका कारण क्या है? उस मन को क्या चाहिए? जो चीज हम नहीं दे रहे हैं इसलिए अधिक से अधिक चंचलता मचा रहा है। बात इतनी ही है कि मन को यथार्थ रीति समझ ले और उस अनुसार उसको वही चीज प्रदान कर दे तो अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन मन को समझने की जरूरत है, तब वो भगवान में भी लगेगा। ये नहीं कि भगवान में हमारा मन लगना नहीं चाहता है, चाहना तो है, लेकिन शायद उसको यथार्थ ये नहीं मालूम कि कहाँ लगाना है। एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था, उसका बेटा बीमार हो गया। कई डॉक्टरों को दिखाया सभी डॉक्टरों ने यही कह दिया, अब भगवान बचाए इसे, हमारे हाथ में ये केस नहीं है। और उस वक्त ब्राह्मण ने भगवान को याद करना आरंभ किया, खूब दिन रात भगवान की भक्ति करता रहा, कृष्ण को पुकारता रहा, हे कृष्ण मेरे बच्चे को बचा लो। जब दिन रात लगातार कृष्ण की भक्ति करता रहा, कृष्ण ने सोचा मेरा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, जाना चाहिए। नीचे आने की तैयारी कर रहे थे, वहां एक पड़ोसी ने आकर कहा, अरे तू कब से कृष्ण को याद कर रहा है, लेकिन ऐसे समय में कृष्ण को थोड़ी याद करना चाहिए। बोला फिर? बोला ऐसे समय में मां को पुकारना चाहिए, मां का हृदय करुणा वाला होता है, और इसलिए तू अंबे मां को पुकार, देख तेरे मनोकामना कैसी पूर्ण हो जाती है। उसने भी सोचा यही बात सही है, अंबे मां को पुकारने लगा। वहां कृष्ण आधे तक आया, उसने देखा रे तुम मां को पुकार रहा है, चले गए। खूब दिन रात मां की भक्ति करता रहा, मां ने सोचा मेरा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, जाना चाहिए। नीचे आने की तैयारी की, वहां एक मित्र संबंधी ने आकर के कहा, अरे तू कब से मां को पुकार रहा है, लेकिन ऐसे समय में मां को थोड़ी पुकारना चाहिए। बोला फिर? बोला ऐसे समय में तो विघ्नहर्ता गणेश जी है, तू गणेश जी को याद कर, ये विघ्न तेरा टल जाएगा। उसने सोचा बात तो सही है, विघ्नहर्ता गणेश जी है, गणेश जी की भक्ति आरंभ कर दी। वहां मां भी वापस चले गए। खूब दिन रात गणेश जी की भक्ति करता रहा, गणेश जी ने सोचा मेरा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, जाना चाहिए। नीचे आने की तैयारी की, वहां एक और पड़ोसी आकर उसको कहता है, अरे तू गायत्री मंत्र कर दे, क्या चमत्कार होता है। उसने भी सोचा बात तो सुनी हुई है कि गायत्री मंत्र से कई चमत्कार हुए हैं, गायत्री मंत्र आरंभ कर दिया। वहां गणेश जी भी वापस चले गए। खूब गायत्री मंत्र करता रहा, वहां एक और पड़ोसी आकर कहता है, अरे तू संकट मोचन हनुमान जी को याद कर, ये संकट ही टल जाएगा। हनुमान जी की पूजा करने लगा, हनुमान चालीसा बोलने लगा। वहां गायत्री भी चले गए। आखिर उसका बेटा मर गया। कारण? कारण यही कि मन को कहां लगाना है यही पता नहीं है, इसलिए सब मदद के लिए आते थे, चले जाते थे। कहने का भावार्थ, जब तक परमात्मा का भी सही परिचय नहीं, तब तक मन को कहां लगाना है ये पक्का नहीं होता है। एक बार एक कार्टून देखा था कि जहां एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है, हर कॉलम में परमात्मा के लिए कुछ न कुछ लिखा हुआ था। पहली कॉलम में लिखा था, नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है, और उसके संबंधित सारी बातें लिखी थी। दूसरी कॉलम में लिखा था, आत्मा सो परमात्मा, हम सो सोहम, और उससे संबंधित सारी बातें लिखी हुई थी। तीसरे कॉलम में लिखा था, ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था, ईश्वर कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है। पांचवी कॉलम में लिखा था, वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था, वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए वो सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान है तो जैसे विज्ञान ने हर बात का सबूत दिया, ऐसे ईश्वर का भी सबूत दो। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीजन लिया होगा? सत्य किसको कहा जाए? वो परम सत्य क्या है? क्योंकि सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए वो मूंझ गया कि आखिर परमात्मा किसको मानूं मैं? क्या प्रकृति को परमेश्वर मानूं, या आत्मा को ही परमात्मा मानूं, या ब्रह्म को ईश्वर मानूं, या कण कण में व्यापक है ये मानूं, या निराकार है ये मानूं, या साकार है ये मानूं, या है ही नहीं ये मानूं? इतना कंफ्यूज्ड हो गया जो उसने यही कह दिया कि भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। और इसी प्रकार शायद आज दुनिया के अंदर नास्तिकवाद बढ़ता जा रहा है कि आज कोई बच्चे को अगर कहते हैं माँ बाप कि भगवान को याद करो, तो वो यही सवाल पूछता है कौन से भगवान को याद करना चाहिए, या भगवान को याद करने से मुझे क्या मिलेगा? और जिसका उत्तर माता पिता के पास है नहीं, और इसलिए वो सोचता है भगवान है ही नहीं। जिस प्रकार वो दृष्टांत देते हैं कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया आप हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, ले गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी का वर्णन किया। एक के हाथ में पैर आया तो कहा हाथी खंभे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा हाथी दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा हाथी रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सूंड आई तो कहा हाथी सांप जैसा है, और एक के हाथ में कान आए तो कहा हाथी सुपड़े जैसा है। अब आखिर हाथी कैसा था? क्या ये पांचों ही सत्य है? हाथी खंभे जैसा भी था, दीवार जैसा भी था, रस्सी जैसा भी था, सांप जैसा भी था, और सूप जैसा भी था। क्या ये पांचों सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है, या सत्य कुछ और है जिसको वो देख ही नहीं पा रहे थे? किसको सत्य माने? ठीक इसी प्रकार आज हमारे सामने जो परमात्मा के विषय को लेकर के इतने सारे मतांतर है, क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है, या सत्य कुछ और है जिसको हम भी समझ नहीं पाए हैं? और जितना ही सत्य को समझने का प्रयत्न किया, उतना ही दिन प्रतिदिन सत्य से दूर होते गए, और आज ईश्वर से हम भी बहुत दूर चले गए। तो सत्य किसको कहा जाए? कल सचमुच अगर हमारे सामने ईश्वर आ भी जाए तो क्या हम उसको पहचान सकेंगे? तो वो परमात्मा कौन, और कैसे पहचाने कि परमात्मा किसको कहा जाए? वो बचपन में एक कविता सिखाते हैं, गुजराती में बहुत सुंदर शब्द है, मने केशो परमात्मा केवा हसे क्या रहता हसे सुकरता हसे, मने कहो ने परमात्मा केवा हसे। यही पता नहीं अब तक भी बचपन की वो कविता आज दिन तक भी हमारे सामने एक प्रश्न बनकर के ही रह गई, કે મને કહેશો ને પરમાત્મા કેવા હશે, ક્યાં રહેતા હશે, શું કરતા હશે, મને કહો ને પરમાત્મા કેવા હશે. और इसीलिए जब तक परमात्मा को यथार्थ रूप से जाना नहीं, पहचाना नहीं, तब तक मन को कहां लगाना ये मालूम ही नहीं. और फिर मन को दोष देते रहते हैं, लेकिन उसको पहले स्पष्ट समझ तो दे. मन बड़ा समझदार है, उसकी समझ में सिर्फ कोई बात आ जानी चाहिए तो सहज हो जाएगा. और इसलिए ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने और एक मत दे दी उसको हमें मानना है क्या. नहीं, हम मत नहीं देंगे आपको. हम आज आपको एक कसौटी देंगे. जैसे एक झवेरी होता है, उसके पास एक कसौटी रहती है जिस पर कसकर वो देखता है सोना कितना कैरेट का है, 14 कैरेट है, 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, और फिर उसकी कीमत का निर्णय लेता है. ठीक इसी प्रकार परमात्मा किसको कहा जाए, उसको पहचानने की वो कसौटी क्या है, आज हम आपको वो कसौटी दे रहे हैं. और ये कसौटी पर कसकर देखो सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो इसी के आधार पर. और ये कसौटी है पांच बातें. सबसे पहली बात है कि परमात्मा उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले परमात्मा के रूप में स्वीकार करें उसको कहेंगे परमात्मा. ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमानों का अलग है, क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन, परमात्मा एक है. वो सर्व धर्म को मान्य हो उसको कहेंगे परमात्मा, परमेश्वर. दूसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई न हो, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे परमेश्वर. जिसका कोई माता पिता नहीं होना चाहिए, जिसका कोई गुरु नहीं होना चाहिए, जिसका कोई रक्षक नहीं होना चाहिए, वो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक है. तीसरा, परमात्मा उसको कहा जाता है जो सर्व से परे, अर्थात कि जैसे मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, परमात्मा अर्थात जो सभी चक्र से ऊपर है. मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्र अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं, जबकि परमात्मा ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा कि मैं अजन्मा हूं, काल मुझे खा नहीं सकता है, मैं कालों का काल हूं. तो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर है, जो देह और देह के संबंधों के चक्र से ऊपर है, जो कर्म और कर्म के फल के चक्र से ऊपर है, अकर्ता भोक्ता है, जो पाप और पुण्य के चक्र से परे हैं, सुख और दुख के चक्र से परे हैं, जो इन सभी चक्र से ऊपर है उसको कहेंगे परमात्मा. चौथा, परमात्मा उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, ज्ञाता है, जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान है, आदि मध्य और अंत, जिसके पास तीनों लोकों का ज्ञान है, इसीलिए ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जुड़ती है, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ, जो मनुष्य को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला है, त्रिनेत्री, और जो त्रिमूर्ति हो, विष्णु महेश का भी जो रचयिता हो, ये तीन की महिमा जिसके साथ लगे उसको कहेंगे परमात्मा, परमेश्वर। और पांचवा परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्व शक्तिमान हो, जिसकी महिमा में मां शारदा ने बहुत सुंदर कहा है, धरती का कागज बनाओ, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ और स्वयं मां सरस्वती बैठकर परमात्मा की महिमा लिखे, तो भी वो अपरंपार है। अर्थात मां सरस्वती भी उसकी महिमा लिखने में असमर्थ है। उसको कहेंगे परमात्मा, इतनी अनंत महिमा जिसकी है, इतने अनंत गुण जिसके हैं, उसको कहेंगे परमात्मा। तो ये पांच बातें, यह कसौटी, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्व सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। अब ये पांचों बातें किसके साथ लगती है? एक एक मत को अगर उठाया जाए और उसको देखे कस करके, लगती है। सबसे पहली मत अगर उठाएं, जब कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को परमेश्वर के रूप में सभी धर्म वाले स्वीकार करेंगे? वो किसी कवि ने बहुत सुंदर गीत की लाइन कही है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने इतनी सुंदर प्रकृति का ये चित्र खींचा है, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य किसको कहे? प्रकृति परमेश्वर है, ये कहना सत्य है। ये प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है। किसको सत्य कहे? ये खेल ही जब बना हुआ है पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति का, तो परम पुरुष और प्रकृति दोनों अलग अलग है, एक नहीं हो सकता है। और अगर प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहे, तो भी अलग अलग है, क्योंकि रचयिता और रचना, चित्र और चित्रकार एक नहीं हो सकता है, अलग अलग है। सत्य ये है कि प्रकृति परमेश्वर की रचना है, बहुत श्रेष्ठ कृति है। दूसरा, जब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है, हम सो सो हम है, तो भगवान के मंदिर में जाकर हम ये क्यों कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे? सत्य क्या है? हम उस मात पिता की संतान हैं या हम ही परमात्मा हैं? विवेक क्या कहता है हमारा? सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है या हम परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? संतान है। अगर हम परमात्मा की संतान है, तो वो परमात्मा कौन? कई बार कई लोग कहते हैं कि अगर जीवन में हम पुरुषार्थ करेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो हम प्राप्त कर ले पुरुषार्थ करके। हाँ, मनुष्य अपने कर्मों से जो बनना चाहे बन सकता है। किसी ने पुण्य का कार्य किया तो कहेंगे ये पुण्यात्मा है, किसी ने कोई महान कर्म किया कहेंगे ये महात्मा है, किसी ने कोई धर्म का काम किया कहेंगे ये धर्मात्मा है, किसी ने कोई दिव्य कर्म किया कहेंगे ये देवात्मा है। किसी ने कोई पाप कर्म किया कहेंगे पापात्मा है। तो पापात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, देवात्माएं भी अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्माएं ये शब्द नहीं सुनते, गॉड इज वन। इसलिए परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है। आज मनुष्य संसार में पुरुषार्थ करके कुछ भी बन सकता है, कोई भी डिग्री प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है नहीं? बाप जैसा बन सकता है, पिता जैसा, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर पिता की गद्दी संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, परंतु जब वो पिता के सामने जाता है तब बच्चा ही रहेगा। ये नहीं कि अब मैं पिता समान हो गया इसलिए मैं ही पिता हो गया हूँ, नहीं, छोटे भाई बहने भी उसको पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। यही कहते हैं, आप हमारे पिता समान हो लेकिन पिता नहीं हो, वो स्थान नहीं दे सकते। ठीक इसी प्रकार हम भी पिता जैसा बन सकते हैं, परमात्मा जैसा बन सकते हैं, परमात्मा नहीं बन सकते। वो कोई डिग्री नहीं है जो हम प्राप्त कर ले और बन जाए। तीसरा, कई बार कई लोग सोचते हैं कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, इसी प्रकार हम भी परमात्मा से निकले हैं और अंत में जाकर उसी में समा जाना है। ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, सागर बन गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम भी परमात्मा से निकले हो और अंत में जाकर के परमात्मा में समा जाना हो तो आत्मा का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जबकि आत्मा के लिए तो कहा जाता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है, सदा शाश्वत है। तो इसलिए परमात्मा में समाने वाली बात भी नहीं हो सकती है, नहीं तो क्या हम परमात्मा में समा करके आत्मा के अस्तित्व को खत्म कर देंगे? नहीं, आत्मा का अपना एग्जिस्टेंस सदा के लिए है ही है। इसीलिए आत्मा को कहते हैं आत्मा इटर्नल है, इटर्नल अर्थात जिसका विनाश कभी नहीं होता है। वैसे भी साइंस में कहा जाता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक इसी प्रकार आत्मा जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका भी देयर इज नो क्रिएशन नो डिस्ट्रक्शन, वो सदा के लिए उसी स्वरूप में निवास करती ही है। चौथा, जब कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? उसकी महिमा में गाते हैं पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। अब सत्य किसको कहे, ब्रह्म ही ईश्वर है कहे या पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर है कहे, सत्य किसको कहे? अपने लिए मैं आता हूं तो कहां से आएगा? अगर वो यही है तो आएगा कहां से? अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे, और फिर उसको विनाश करने के लिए कौन आएगा? कई प्रश्न सामने खड़े हो जाते। इसीलिए जब गीता में भी यही कहा है कि मेरा धाम परम धाम है, मैं परम धाम का वासी हूं। आज प्रकृति के अंदर भी एक गुण होता है कि अपने गुणों को ट्रांसफर कर सकते हैं। अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, लोहा भी एकदम लाल होके गर्म हो जाएगा। परमात्मा अगर सब में व्यापक हो, वो इतना गुणों में अनंत हो, उसके कोई गुण प्रतीत न होते हो, ऐसा हो सकता है? चारों तरफ अगर नजर करे तो कहीं पर परमात्मा जो इतना गुणों में अनंत है वो प्रतीत ही नहीं हो रहा है। आज मनुष्य भी थोड़ा दिन किसी के संग में रहता है तो उसका संग का रंग लग जाता है। उतना ही नहीं, पशु पक्षी भी थोड़े दिन किसी के संग में रहते हैं तो उसका भी संग का रंग लग जाता है। आज प्रैक्टिकली देखे के एक छोटी कहानी है कि एक बार एक शिकारी दो तोते पकड़ के ले आया। बाजार में बेचने बैठा, एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए, दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। कुछ दिनों के बाद देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था वो भजन गा रहा था, राम राम बोल रहा था, और जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था सुबह सुबह ही गाली बोलने लगता था। पशु पक्षियों को भी थोड़े दिन किसी के संग में रहते तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। परमात्मा अगर हम सबके अंदर बैठा हो और वो गुणों में इतना आनंद हो और उसका कोई गुण का संग का रंग हमें न लगे, ऐसा हो सकता है? तब फिर कई लोग पूछते हैं, क्या शास्त्र में ये बात जो आई वो झूठ है? झूठ भी नहीं है, एक भावनात्मक सत्य है। जैसे आज घर के अंदर छोटा बच्चा होता है, घुटने करते हुए घड़ी घड़ी बाहर जाता है, जैसे ही घुटना करना सीखता है तो उसको बाहर जाने की इच्छा होती है। माँ क्या करती है, उसको दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता दिखाती है और कहती है, देख बाहर गया ना, वो कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब सचमुच कोई कुत्ता उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन वो बच्चे को एक डर बिठाया ताकि वो घर के अंदर खेलता रहे और माँ को ध्यान कम देना पड़े। और इसीलिए जब वो घुटने करते हुए दरवाजे तक जाता भी है, बाहर कुत्ता देखता है तो क्या करता है, वापस अंदर आ जाता है, बाहर नहीं जाता है। लेकिन वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 5-6 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो बाहर गया कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? वो अपनी माँ पर हंसता है, मेरी माँ भी कैसी है, इतना भी समझती नहीं है, जो कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। या कहेगा ठीक है मैं ही कुत्ते को ले आता हूँ घर में, है ना? उसको वो डर नहीं रहता है और बाहर हंसते हंसते चला जाता है क्योंकि समझदार हो गया। लेकिन वही बात को पहले उसने सत्य मान लिया था और उसी में उसकी सुरक्षा थी, घर के अंदर रहता था। ठीक इसी प्रकार जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो आने वाले कलि काल को देख सकते थे कि जब कलयुग आएगा तो कितना घोर पापाचार का युग होगा और मनुष्य को ये पाप कर्म से बचाएं कैसे। तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि कोई तुझे नहीं देख रहा है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है, वो तुझे देख रहा है। और इसीलिए मनुष्य पाप कर्म करने से डरता था कि भगवान मुझे देख रहा है, नहीं करता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य भी बड़ा हो गया ना, समझदार बन गया है, इसीलिए जब उसको कोई कहता है भगवान तुझे देख रहा है तो क्या कहता है, अगर भगवान देख रहा है तो देखता क्यों है, छुड़ाए ना। अर्थात वो डर भी नहीं रहा और पाप कर्म करता ही चला गया, अर्थात वो कलयुग का प्रभाव होकर के ही रहा। तो इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी है, ये एक भावनात्मक सत्य है कि जब उसको लेकर चलता है तो मनुष्य पाप कर्म से बचा रहता है, सुरक्षित रहता है, पाप कर्म उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ये अज्ञान है। पांचवी बात जब कहते हैं वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। नाम रूप आकार बिना कोई चीज इस संसार में है, हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक चित्रकार को अगर चित्र निकालना हो और उसको तेज हवा दिखाना हो, एक चक्रवात तूफान दिखाना हो, तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा दिखाई है, तूफान दिखाया है, और शांत प्रकृति दिखानी है तो भी दिखा सकता है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में ढाल देता है, तो क्या स्वयं परमात्मा को कोई नाम रूप आकार नहीं होगा? तो वो नाम रूप आकार कौन सा है जिसको सभी धर्म वाले स्वीकार करें परमात्मा के रूप में? तो जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षियों का पिता पक्षी है, पशुओं का पिता पशु है, तो आत्मा का पिता परमात्मा, वो भी एक आत्मा है। आत्मा का स्वरूप क्या है? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। इसीलिए तो कोई शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाते हैं, कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई। आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप हो तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी सूक्ष्म ते सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है, जिसकी पूजा भारतवासियों ने ज्योतिर्लिंगम के रूप में किया है। जो ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार है, जिस पर मनुष्य अपनी भावनाओं को अर्पित कर सके, पूजा कर सके, इसलिए एक निराकार आकार दे दिया, लेकिन कहा ज्योतिर्लिंगम, जो ज्योति का आकार है, जिसकी पूजा भारतवासी करते हैं, और 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में सारे भारत भर में उसका यादगार है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। 12 ज्योतिर्लिंगम जहां देवताओं की कहानी जुड़ी हुई है, इसीलिए तो वो महान तीर्थ स्थान हो गए। और हर मंदिर के नाम भी गुणवाचक और कर्तव्यवाचक है, और नाम के एंड में या नाथ या ईश्वर होता है। अमरनाथ, बबुलनाथ, सोमनाथ, भोलानाथ, विश्वनाथ, या ईश्वर के रूप में रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सब शिव के मंदिर। जो सर्व का नाथ और ईश्वर है उसको कहेंगे परमेश्वर। जिसको कहा देवों का भी देव, आज भारत के अंदर देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम से कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में गए तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा अधिक मिलेगी, विष्णु पूजा। तो कलकत्ता तरफ चले जाओ तो काली पूजा, दुर्गा पूजा अधिक मिलेगी, और गुजरात महाराष्ट्र में आ जाओ तो गणेश पूजा अधिक मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा करते हैं, साउथ में जाओ श्री रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, कि जिसकी पूजा श्री राम ने भी की। ईस्ट में जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, और वेस्ट में चले जाओ तो सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत के चारों कोनों में उसकी पूजा होती है। भारत से बाहर नेपाल चले जाओ, पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। जिसको कहा देवों का भी देव, अगर श्री राम भगवान थे तो रामेश्वर में पहुंचकर उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? क्योंकि स्वयं राम भी जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि रावण बुद्धिशाली था, तो वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव से, शिव भक्त था, और इसीलिए जब उसने शिव से वो शक्ति प्राप्त की है, उसके पास परमात्म शक्ति है, उसके ऊपर अगर विजयी होना है तो मुझे भी वो शक्ति पहले प्राप्त करनी होगी, तब मैं उसके ऊपर विजयी हो सकता हूं। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में अगर गए और दुश्मन की शक्ति का अंदाजा नहीं है, हार जाओगे। और इसीलिए श्री राम को युद्ध के मैदान में जाने से पहले भली भांति दुश्मन की शक्ति का पूर्ण अंदाजा था। इसलिए रामेश्वरम पहुंच करके उन्होंने भी शिव की पूजा की, वो शक्ति प्राप्त किया, और फिर रावण से युद्ध करके उसके ऊपर विजयी बन सके। इसी तरह आज कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाओ, वहां स्थानेश्वर का मंदिर है, जहां पर पंडित लोग बताते हैं कि यहां पर महाभारत के युद्ध के आरंभ के पहले श्री कृष्ण ने शिव की पूजा की थी, पांडवों से भी पूजा कराई थी। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? क्योंकि अधर्म पर विजय प्राप्त कराना था, जो श्री कृष्ण भी अपनी शक्ति से नहीं करा सकता था, और इसलिए वो शक्ति को पहले प्राप्त किया, फिर महाभारत युद्ध आरंभ हुआ। इसी तरह जिन देवियों की पूजा हम करते नवरात्रि में, ये देवियां कौन थी? कहते हैं उसकी आरती में गाते हैं, शिव शक्ति की आरती जे कोई गाते। भारत में जब असुरों का साम्राज्य बढ़ गया था, तब परमात्मा ने शक्ति को उत्पन्न किया, नव दुर्गे, जिसने ये असुरों का संहार किया, इसीलिए उनको कहते हैं असुर संहार ने शिव शक्तियां। तो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। उतना ही नहीं, लेकिन यहां भारतवासी एक गलती कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जहां दोनों का नाम अलग है, जहां दोनों का स्वरूप अलग है, एक है आकारी देव पुरुष, एक है निराकार ज्योति स्वरूप। जहां दोनों का कर्तव्य अलग है, एक है निराकार ज्योति स्वरूप, एक है आकारी देव पुरुष, तो एक कैसे हो सकता है? और अगर एक ही है तो शंकर ने कैलाश पर्वत पर बैठकर किसकी आराधना की, किसकी तपस्या किया? शंकर भी जब कैलाश पर्वत पर बैठकर इतने सालों तक तपस्या करते रहे, किसकी तपस्या की? उनसे श्रेष्ठ कौन था और किस लिए इतने साल तपस्या करनी पड़ी? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, कौन सा पाप किया था जो इतना साल तपस्या करना पड़ा उसको? कोई गुनाह की बात नहीं थी। कैलाश पर्वत पर बैठकर उन्होंने भी उनके सामने भी शिवलिंग रखा है। अर्थात उन्होंने भी शिव की तपस्या की। किस लिए किया? तो शंकर को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था। कौन सा? आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए। तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब आंख खोलते महाविनाश हो सकता है। इसीलिए शंकर ने भी इतने साल तपस्या करके एकाग्रता से वो शक्ति को प्राप्त किया और तब अपने कर्तव्य को बड़ी खूबी के साथ निभा सके। जब अमरनाथ की यात्रा पर कई भक्त लोग जाते हैं तो वहां के पंडित लोग अमरनाथ का महत्व बताते हैं कि अमरनाथ का महत्व क्या है। तब कहते हैं अमरनाथ का महत्व इसलिए है कि यहां बैठकर शंकर ने पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाई थी। शंकर ने पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाई थी जिसके साक्षी वो दो कबूतर दिखाते हैं। अब शंकर ने पार्वती को कौन से अमरनाथ की कथा सुनाई थी? तो इसका मतलब अगर शंकर ने भी पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाई तो अमरनाथ और शंकर अलग है ना, एक नहीं है, स्पष्ट हो जाता है। ये तो अज्ञानता के कारण हमने कह दिया दोनों एक ही है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। एक दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक भिखारी था, रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। राजा का भी नियम था कि मेरे द्वार पर जो आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, रोज कुछ न कुछ देता था। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया, ये राजा लाता कहां से है, अगर उस स्रोत को मैं भी जान लूं तो मुझे भीख मांगनी ना पड़े। उसने सोचा सुबह सुबह ही स्रोत से प्राप्त करता होगा, फिर सारा दिन सबको बांटते रहते हैं, आज मुझे जानना जरूर है कहां से प्राप्त करते राजा जो सारा दिन सबको देते रहते हैं। तो सुबह 6 बजे में पहुंच गया, द्वारपाल से पूछा, है द्वारपाल तुम मुझे ये बताओ कि राजा इस वक्त कहां होंगे और क्या करते होंगे। द्वारपाल ने कहा राजा वो तो मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं। उसने सोचा जरूर वहां कोई स्रोत होगा जहां से प्राप्त करते होंगे, पीछे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी झोली सदा भरतू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ये शब्द सुने भिखारी उठकर बाहर आ गया। द्वारपाल ने देखा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, पूछा क्या बात थी? कह रहे आज पता चला ये राजा भी भिखारी है, वो भगवान से मांग रहे हैं, भगवान उसकी झोली इतनी भरता है, वो हमारी झोली तो इतनी भरता है, हम भी भगवान से डायरेक्ट क्यों न मांगे। चलते चलते भिखारी के दिमाग में विचार आया कि राजा जो पूजा कर रहे थे वो हनुमान जी की कर रहे थे, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी। लेकिन हनुमान जी की झोली किसने भरी? तब कहा वो तो श्री राम भक्त थे, अर्थात श्री राम ने हनुमान जी की झोली भरी, हनुमान जी ने राजा की झोली भरी और राजा ने हमारी झोली भरी। फिर मन में विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी? तो कहा उसने तो भोलेनाथ को याद किया था, अर्थात भोलेनाथ ने श्री राम की झोली भरी, और भी भक्त होंगे एक हिस्सा श्री राम को दिया होगा। श्री राम को भी तो कितने सारे को देना होता, एक हिस्सा हनुमान जी को मिला होगा, हनुमान जी को भी कितने सारे को देना होता है, एक हिस्सा राजा को दिया होगा, राजा को भी तो कितने सारे को देना होता, एक हिस्सा मेरे पास आए। कहे ये वाया वाया में सब कट हो रहा है, आज के बाद डायरेक्ट कनेक्शन भोलेनाथ के साथ, कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं अटक गए हैं? अगर वाया वाया में अटक गए होंगे तो क्या होगा, बहुत कम मिलेगा। इसीलिए आज के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन, भोलेनाथ के साथ जो सबकी झोली भरता है, इसीलिए तो उसको भोलानाथ कहा। रावण ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, श्री राम ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, कोई अंतर नहीं। जिसने प्यार से उसको याद किया, इतना भोला है, दे दिया शक्ति। तो इसलिए वाया वाया में अभी नहीं अटकना है, अब डायरेक्ट कनेक्शन भोलेनाथ के साथ ही हो हमारा। जिसके मान्यता खाली भारत भर में नहीं, लेकिन और धर्म में भी अगर देखा जाए, मुसलमान धर्म में मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, परंतु मक्का जब हज यात्रा पर जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, निराकार स्वरूप जिसका कोई शारीरिक आकार नहीं। उसके पीछे कहानी है कि जब मुसलमान धर्म में परमात्मा के विषय को लेकर मतभेद हुआ, तब एक आकाशवाणी हुई थी कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और वो पत्थर ऊपर से आकर गिरा था मक्का में, जहां उसको स्थापित कर दिया गया। और इसलिए हर मुसलमान ये मानते हैं कि जीवन में एक बार ये पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल हुआ। वहां जाकर मुसलमान लोग क्या करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, और प्रायश्चित करने के बाद अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन कहते हैं, हे परवरदिगार, भगवान को एड्रेस करते हैं, हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। और तब उनका हज कबूल होता है। परवरदिगार परमात्मा के लिए कहा नूरे इलाही, नूर का मतलब है तेज। हमने जिसको ज्योतिर्लिंगम कहा, ज्योति का मतलब भी तेज है, तो नूर का मतलब भी तेज है, तो बात तो एक ही हो गई ना, चाहे नूर कहो चाहे ज्योति कहो। क्रिश्चियन धर्म में जाए, क्राइस्ट ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। कहा जाता है कि मूसा जब माउंटेन पर गए थे, जहां उसको दो पत्थरों पर 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय उसको अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। जिस ज्योति के साक्षात्कार के साथ ही मोसेस ने कहा यहोवा, अर्थात द सुप्रीम लाइट। इसलिए क्राइस्ट ने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। आज भी जब चर्च में चले जाओ तो वहां मोमबत्ती जलाते हैं, उसमें भी एक बड़ी मोमबत्ती होती है, बाकी छोटी छोटी मोमबत्तियां होती है। छोटी मोमबत्ती आत्माओं का प्रतीक है, बड़ी मोमबत्ती परमात्मा का प्रतीक है। उन्होंने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात तो एक ही हो गई ना। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी व्याख्या की है, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत। जो निराकार है, निर्वैर है, वही एक सत्य नाम है जिसको काल कभी नहीं खा सकता, अकाल मूरत है, ओमकार स्वरूप है। और आगे जाए, महावीर स्वामी ने भी किसका ध्यान किया, जिसको कहते हैं सिद्ध शिलापति, कि वो सर्वश्रेष्ठ चरित्रवान है। इसीलिए तो दिवाली के दिन जब जैनी लोग महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया है, वो गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है और वो शिव कौन है। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने भी किसका ध्यान किया। आज भी जापान चले जाओ, 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली में लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकोन शेकी। उसको परमात्मा का स्वरूप मान करके ध्यान करते हैं, या जिसके ध्यान से हमें शांति प्राप्त होती है। तो उन्होंने निराकार कहा, उन्होंने ओमकार कहा, उन्होंने लाइट कहा, नूर कहा, हमने ज्योति कहा, बात तो एक ही हो गई ना। पारसियों की अग्यारी में चले जाओ जहां अखंड ज्योत जलती रहती है। कहा जाता कि पारसी लोग ईरान से जब भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा लेकर के आए थे और यहां स्थापित किया था। उन्होंने अखंड ज्योत कहा। तो सर्व धर्म मान्य एक ही स्वरूप है और वो है निराकार ज्योति स्वरूप, प्रकाश, नूर, लाइट, जो भी कहो। गीता के अंदर भी जब भगवान ने अर्जुन से कहा मैं अजन्मा हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, तब अर्जुन को भी संशय आया कि हे प्रभु, आपने तो जन्म लिया, आप तो कर्ता पुरुष हो, भोक्ता पुरुष हो, फिर कैसे ये कह सकते हो, मुझे आपका वास्तविक रूप दिखाओ। तब कहा जाता है हजारों सूर्य से तेजोमय रूप देखा, जिसका तेज स्वयं अर्जुन भी सह नहीं सका और कहा बस करो प्रभु, ये तेज मैं सह नहीं सकता। कहने का भावार्थ ये है कि परमात्मा का एक ही स्वरूप है जो सर्व धर्म मान्य है, जिसको सभी धर्म वालों ने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है। आज जैसे कोई एक व्यक्ति को कोई मामा कहता हो, कोई चाचा कहता हो, कोई भाई कहता हो, कोई पिताजी कहता हो, लेकिन है तो वो एक ही ना, कि हर बार उसका स्वरूप भी बदली हो जाता है। आज परमात्मा को भी कोई गॉड कहे, अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, लेकिन स्वरूप तो एक ही होना चाहिए या हर बार बदली हो जाना चाहिए? तो सर्व धर्म मान्य एक ही है, वही सर्वोच्च शक्ति है जिसके तरफ सभी ने अपनी अंगुली करके इशारा दिखाया। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभू। शंभू का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है, उसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, सेल्फ क्रिएटेड है। इसीलिए वो सर्वोच्च शक्ति है, न कोई माता, न पिता, न बंधु, न सखा, न गुरु, न शिक्षक, न रक्षक, कोई नहीं है। तीसरा जब कहते हैं सर्वोपरि, सभी चक्र से जो परे है, जन्म और मृत्यु के चक्र से पर है, देह और देह के संबंधों के चक्र से पर है, कर्म और कर्म के फल के चक्र से परे है, पाप और पुण्य के चक्र से परे है, सुख और दुख के चक्र से परे, संसार के सभी चक्रों से जो परे है, वो स्वयंभू परमात्मा ही है, जो इन सभी चक्र से इंसान को भी छुड़ाने वाला है, मुक्त करने वाला है। चौथा पर होते हुए भी जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। बीच में एक आंख होती है, अर्थात जो त्रिनेत्री है, मनुष्य को भी ज्ञान का दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला है, और जिसकी पूजा में तीन पत्र का बिलि पत्र चढ़ता है, अर्थात जो एक डंडी के साथ जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कंट्रोलर है, रचयिता है। इसीलिए ये तीन देवताओं की भी उत्पत्ति का रहस्य मालूम नहीं है, कहां से प्रकट हुए, कौन है माता पिता इनके, ब्रह्मा कहां से आए कहेंगे विष्णु के नाभि कमल से आए, विष्णु कहां से आए तो कहेंगे ब्रह्मा के नाभि कमल से आए, इसलिए तो कहते ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, लेकिन कौन पहले आया और किसको निकाला मालूम ही नहीं है, कोई कथा नहीं है, और शंकर कहां से आए पता नहीं। तो जो ये तीनों देवों का भी कंट्रोलर है, रचयिता है, इसलिए उनको कहते हैं जीओडी, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जो ये तीनों देवताओं के भी अधिकारी है, इसीलिए परमात्मा को कहते हैं करण करावनहार, खुद करता नहीं है, इन तीन देवताओं से अपना कर्तव्य कराते हैं। और पांचवा, सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है, इसीलिए ज्योति बिंदु, बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिट, अनंत, जिसका मेजरमेंट नहीं होता है। परमात्मा की व्याख्या अगर एक लाइन में करें तो वो बिंदु में सिंधु है, ही इज एन ओशन इन अ पॉइंट। सर्व गुणों में अनंत है लेकिन रूप में बिंदु है, और हम आत्माएं भी बिंदु है। तो ये है परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी का भी परिचय लेते हैं ना, तो पांच बातें मुख्य पूछी जाती है कि आपका नाम क्या है, फिर वो व्यक्ति का फोटो चाहिए, स्वरूप वही है या दूसरा है, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस, और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो परमात्मा का नाम, जिसको कहा सदा शिव, सदा कल्याण करने वाला, गॉड, परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, जो भी कहो, ये विभिन्न नाम है। उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश पुंज है। उसके क्वालिफिकेशन है सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व गुणों में अनंत। और उसका एड्रेस है पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, परम धाम का निवासी है, हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड, सातवां आसमान जिसको कहा, वहां परमात्मा का निवास स्थान है। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करने लिए परमात्मा को इस संसार में आना पड़ता है। तो ये है परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अब हम थोड़ी देर के लिए योग अभ्यास करेंगे। कल हमने आत्मचिंतन किया, आज हम दूसरा कदम, एक कदम आगे बढ़ेंगे, परमात्म चिंतन। अब परमात्मा का संपूर्ण परिचय तो मालूम हो गया, अब मन को कहां लगाना है मालूम हो गया, कि जो देवों का भी देव, उस परमात्मा में हमें अपने मन को एकाग्र करना है। और फिर परमात्म चिंतन, जो परमात्मा के गुण है उसका चिंतन मन के अंदर करना है और उस पर मन को एकाग्र करना है। खाली चिंतन नहीं करना, उसको महसूस करना है, एक एक गुणों को महसूस करना और एक शक्ति को अपने अंदर अनुभव करना। मांगने की जरूरत नहीं है, जैसे सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, गर्माइश अपने आप आती है। इसी तरह परमात्मा में मन को एकाग्र करें, परमात्मा की शक्ति को हम अपने अंदर महसूस करें। ठीक है, तो चले एक यात्रा पर। जैसे जैसे हम आपको विचार देते जाए, सुनहरी सुबह में जब ये सकारात्मक चिंतन करते हैं, परमात्मा के सानिध्य में मन और बुद्धि को ले चलते हैं और वो शक्ति को अपने जीवन के अंदर नई प्रेरणाओं के साथ स्फुरित करते हैं, भर लेते हैं। इसलिए थोड़ी क्षणों के लिए अपने मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं, अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, भ्रुकुटि की मध्य में मैं एक चमकता हुआ दिव्य प्रकाश पुंज हूं। ये शरीर मेरा मंदिर है, इस मंदिर में विराजमान मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूं। आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, कानों से सुनने वाली मैं चैतन्य शक्ति। कुछ क्षण के लिए इस सभी इंद्रियों के द्वारों को मैं बंद कर देती हूँ और मन और बुद्धि को ले चलती हूँ एक यात्रा पर, अनंत की ओर। पांच तत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार, परम धाम में जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। अंतर चक्षु से मैं स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं। स्वतंत्र रूप में, संपूर्ण मुक्त अवस्था में, जहां कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं। अपने असली स्वरूप में स्थित हूं, सतोगुणी स्वरूप। धीरे धीरे मन को परमात्म सानिध्य में ले चलती हूँ। जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म प्रकाश पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश पुंज है। रूप में बिंदु पर गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है। चारों ओर एक दिव्य प्रभा मंडल को देख रही हूं और उस प्रभा मंडल में परमात्मा का दिव्य स्वरूप प्रकाश पुंज के रूप में। कितना सुंदर स्वरूप है ये, सर्व गुणों में अनंत है, जिसके सानिध्य में मैं स्वयं को भी शक्ति से संचार करती हूं। मैं आत्मा कितनी न सौभाग्यशाली हूं। जो परमात्म स्नेह के पात्र आत्मा बन गए, परमात्म प्यार, परमात्म वरदान के अधिकारी हो, जिस परमात्म पिता की याद में दिल को एक सुकून का अनुभव होता है, आत्म तृप्ति, आत्म सुख का अनुभव। इस परमात्म सुख को स्वयं में समाते हुए अनुभव की गहराई में स्वयं को ले जाते हुए सर्व शक्तियों को स्वयं में समाकर मैं आत्मा पुनः इस पंच तत्व की दुनिया की ओर मन बुद्धि के साथ प्रकृति के मध्य में स्थित होती हूँ। सर्व कर्मेंद्रिय पर अपना अधिकार प्राप्त करती हूँ। ओम शांति शांति।